ॐ शांति, ॐ शांति। बाबा क्यों आए हैं? बाबा क्यों आए हैं? जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो हर मुरली में भिन्न भिन्न उत्तर होते हैं। बाबा आए हैं कांटों को फूल बनाने, लेकिन ये खेल केवल प्रभु का खेल नहीं है, पर प्रभु और माया ये दोनों का खेल है। पर विडंबना ये है कि दुनिया न प्रभु को जानती है न माया को जानती है। माया के लिए भी क्या क्या समझ लिया है। कई बार ये भी कह देते हैं ये प्रभु की माया है। प्रभु की माया नहीं है, पर ये खेल ही बना हुआ है इस प्रकार का, प्रभु और माया का। प्रभु माया पर विजय दिलाते हैं और माया प्रभु के की जो शिक्षाएं हैं उसका अनादर करा के हार दिला देती है। तो इस खेल को समझना है, और इस खेल को अगर समझ लिया तो माया को भी समझना, प्रभु को भी समझना सहज हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? माया को हम कैसे जीतेंगे? बाबा कहते अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुखी होकर अपने आप को देखो, अंतर्मुखी होकर बाबा से सच्ची प्रीत जोड़ो, बाबा को दिल में बसाओ। माया को आने नहीं दो, माया तो बहुत आकर्षित करेगी, अन्न दोष संग दोष में फंसाएगी, बहुत खींचेगी, लेकिन तुम तो अभी प्रभु के बन गए हो, तो माया के वशीभूत नहीं होना है। तो आज बाबा ने कैसे माया क्या करती है और प्रभु क्या करती है दोनों का कॉन्ट्रास्ट बताया है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य आज 4/8/2025 है। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं। क्यों आए हैं? बाबा कहते हैं बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने। फूल बनाते न, पर केवल फूल नहीं, सब फूलों का राजा, किंग ऑफ फ्लावर बनाने। और माया क्या करती है? बदबू दिलाती है ना। तो बाबा कहते इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? बदबू तो नहीं, पर वो भी बदबू भी थोड़ा अंश भी होगा तो भी बदबू तो आएगी ना। भले सब जगह किचरा नहीं होगा, कहीं एक जगह भी होगा तो भी उसकी बदबू तो फैलेगी। तो विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए, तभी तो फूल कहलाएंगे। प्रश्न है, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? ऐसा पुरुषार्थ हो जो सरल भी हो, श्रेष्ठ भी हो और जल्दी फायदा भी दिलाए। तो क्या पुरुषार्थ करना है ताकि विकारों का अंश भी समाप्त हो जाए? उत्तर है, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ। और सचमुच हमने देखा है सवेरे सवेरे अगर वो हमारी स्थिति बनती है अंतर्मुखी की, तो फिर दिन में भी मदद मिलती है। कई तो सुबह उठते ही बाह्य मुक्ता में आ जाते हैं, उठते ही बाह्य मुक्ता, बाबा को चलो गुड मॉर्निंग किया, फिर आवाज में आ जाते हैं। पर कईयों का हमने देखा है इतने पक्के होते हैं जो 8 बजे तक, सुबह 8 बजे तक बिल्कुल साइलेंस में रहते हैं, फिर थोड़ा टॉकी में आते हैं। लेकिन कई तो कंट्रोल ही नहीं है अपने मुख पर, सवेरे से ही बातें शुरू हो जाती, और वो भी क्या दुनियावी बातें। तो बाबा तो कहते हैं सवेरे सवेरे तो कम से कम मुझे याद करो और कोई बातें नहीं सोचो। तो निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो, अगर विकारों का अंश भी समाप्त करना है तो। एक सेकंड में ऊपर जाना और आना, सभी विदेशियों ने ये भट्ठी रखी थी, एक सेकंड में ऊपर जाना और फिर आना। तो कमेंट्री से वो पूरा दिन ऐसे ही प्रोग्राम रखा था ऑनलाइन, एक सेकंड में कैसे परम धाम पहुंच जाओ, फिर एक सेकंड फिर वापस आओ, फिर एक सेकंड में सूक्ष्म वतन पहुंच जाओ, फिर वापस आओ। तो ये ड्रिल बहुत अच्छी उनकी रही ऑनलाइन सबको का कराने लिए। तो बाबा कहते एक सेकंड में ऊपर जाना और आना, इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, अंतर्मुखी एक सेकंड में बीच बीच में हो जाओ, ऐसे लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा हो सकता है, ऐसे लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा, कोई भी चुरपुर नहीं, जरा भी नहीं ले, ऐसा सन्नाटा। और बाबा ने इसका कौन सा मिसाल दिया है, मुरली में दिया है, जैसे कछुआ चलता है फिर ऐसे रुक जाता है जैसे पत्थर बन गया। इसीलिए कछुए के लिए कहा जाता है कि उसकी आयु बहुत लंबी होती है, क्योंकि उसका जो शरीर का मेटाबॉलिज्म है अंदर का वो बहुत स्लो है, बहुत स्लो, हार्ट बीट भी मनुष्यों की तरह नहीं है, बहुत धीरे बहुत धीरे। इसलिए कैसे अंग निकालता है और कैसे फिर ले अंदर ले लेता है और पता भी नहीं चलता, जैसे पत्थर बन गया ऐसे लगता है। तो बाबा कहते हैं कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसे लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा, कोई भी चुरपुर नहीं, यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं, ऐसे महसूस हो जैसे यह सृष्टि है ही नहीं। ओम शांति। यहां हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो बाप की याद में बैठो, और साथ साथ ये जो सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। मनुष्य 84 के चक्र को समझते नहीं है, समझेंगे ही नहीं। बाबा ने ठप्पा लगा दिया, समझेंगे ही नहीं। क्यों बाबा कहते नहीं समझेंगे, समझेंगे ही नहीं तो कौन समझेंगे फिर, हम तो समझ चुके हैं ना, पर कौन नहीं समझेंगे, जो 84 का चक्र लगाते हैं वो ही समझेंगे, बाकी तो समझेंगे ही नहीं। तुमको यही याद करना चाहिए, इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला काट जिनका गला कट जाएगा, शास्त्रों में तो यही देखा है ना, श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र चलाया और गले काटे असुरों के। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा, मनुष्य स्वदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते हैं। ये ज्ञान तुम बच्चों को यहां मिलता है, कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रह पवित्र बनो। ये अलंकार विष्णु के सब यहाँ के लिए है। तो कम सृष्टि चक्र भी है, स्वदर्शन चक्र भी है, फिर कमल का फूल भी है। तो कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रह पवित्र बनो, भगवानो वाच है ना, यह एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग को कहा जाता है वैशालय। ये दुनिया अब बदलती है, वैशालय से शिवालय बन रही है। भारत की ही बात है, औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। कोई पूछे फलाने देश के लिए, कहेंगे वो वैशालय से शिवालय बन रहा है। बाबा कहते और बातों में जाओ ही नहीं। कितनी बातों में हम लोग चले जाते, बाबा कहते जरूरत ही क्या है। तो बाबा कहे औरों की बातों में जाना ही नहीं चाहिए, बोलो। हाँ, कई फिर पूछते जानवरों का क्या होगा। एक भाई बहुत बहस कर रहा था जानवरों का क्या होगा, तो फिर उसको बताया, फिर आखिर में अब ये मानता ही नहीं था, समझता ही नहीं था। भगवान तो सबका है ना, जानवरों का भी तो है ना, उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो हमने कहा अच्छा, आपको इतनी चिंता लगी है जानवरों की, तो आपको जानवर बनना है? कहता नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं बनना है। तो हमको नहीं बनना है फिर पूछते क्यों, पहले अपना तो ख्याल करो। मैं क्या जानवर से भी बदतर बन गया हूँ, तो पहले अपने आप को तो सुधारो, जानवर अपने आप सुधर जाएंगे। बीज को पानी दो, पेड़ को मिल जाएगा, एक एक पत्ते को थोड़ी देना है। तो बाबा कहते हैं औरों की बातों में तो जाना ही नहीं है, बोले जानवरों का क्या होगा, कोई पूछे और धर्मों का क्या होगा, उनको बोलो पहले अपना तो समझो, पीछे औरों की बात, कैसे विनाश होगा, कैसे नई दुनिया आएगी, कैसे आएगी। अरे पहले वो तो चिंता करो कि मैं क्या बनूंगा, मैं क्या बनूंगा तो सोचते ही नहीं है, बस ये क्या होगा कैसे होगा। तो बोलो पहले अपना तो समझो, पीछे औरों की बात। भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं, भारत में ही पुकारते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। विलायत में मात पिता अक्षर नहीं कहते हैं, मात पिता अक्षर नहीं कहते, पिता कहते हैं, गॉड द फादर। फिर वो तो कुमार दिखाते हैं ना, जीसस क्राइस्ट को तो कुमार था, और तो मदर किसको बना दिया, फिर मेरी को बना दिया, उसकी माँ को मेरी कह दिया, माना माँ कह दिया मेरी को। तो देखो मदर ये, परंतु हमेशा गॉड द फादर कहेंगे। तो इसीलिए विलायत में मात पिता अक्षर नहीं कहते हैं, वो सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे, भारत स्वर्ग था ये भी तुम जानते हो। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, बाप को बागवान भी कहते हैं, बुलाते हैं। बागवान को क्यों बुलाते हैं, कि आकर के कांटों को फूल बनाओ। तो बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं और माया खेल, दोनों का है ना, प्रभु और माया। और माया क्या करती है, बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं और माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य तो कह देते हैं ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है। अब ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है, न ईश्वर को न माया को समझते हैं। ईश्वर भी कौन है पता नहीं, माया वास्तव में क्या है वही पता नहीं। कोई ने अक्षर कहा बस रिपीट करते रहते प्रभु तेरी माया बड़ी प्रबल है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो अब ये प्रभु तेरी माया परंपरा है, ऐसे नहीं। तुम क्या समझते हो, ये ड्रामा का खेल है, प्रभु की माया नहीं है, ये खेल ही है प्रभु और माया का, ये ड्रामा का खेल है। राम राज्य का और रावण राज्य का, राम राज्य में सुख रावण राज्य में दुख है, यहाँ की ही बात है। ये कोई प्रभु की माया नहीं है, अभी माया का बोलबाला है इस समय, तो ये कोई प्रभु की माया नहीं है, ऐसे नहीं कि प्रभु ने ये सब किया है, ये कोई प्रभु की माया नहीं है। माया कहा जाता है पांच विकारों को, जिसको रावण कहते हैं। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते हैं, सतोगुणी से तमोगुणी बन नहीं है। इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, कोई भी योग बल की पैदाइश है ही नहीं। इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। नाम भी है विषय स्वर्ग, फिर वॉइसलेस दुनिया अर्थात पुरानी दुनिया से नई कैसे बनती है, ये तो समझने की बात है ना। और ये भी कॉमन बात है कि हर चीज नई से पुरानी बनती है, तो वॉइसलेस से विशेष कैसे बनती, ये कोई बड़ी बात नहीं है समझना, कॉमन बात है क्योंकि हर चीज नई से पुरानी बनती है, ये तो समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था, तो बच्चे जानते हैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला परम पिता परमात्मा है, उसमें सुख घनेरे हुए। जो स्वर्ग की स्थापना भगवान ने की उसमें सुख घनेरे हुए हैं। ज्ञान से दिन भक्ति से रात कैसे होती है ये भी कोई समझते नहीं। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली का दिन, हम क्या कहेंगे ब्रह्मा का दिन कहते, फिर हम कहते हैं ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा की जो मुख संतान है उनका भी दिन, फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात। दिन और रात तो यहाँ ही होता है, अब ये कोई नहीं समझते। दिन है स्वर्ग और रात है नरक, तो वही होगा ना, जहाँ दिन है वहीं फिर बाद में रात आएगी, ये थोड़ी दिन एक जगह होगा रात दूसरी जगह होगी, नहीं। भले सृष्टि ज्योग्राफी के अनुसार ये है अभी यहाँ सवेरा है, परंतु अमेरिका में तो इस समय रात ही है ना, परंतु वो अलग बात है, फिर वहां दिन आना है, पर आएगा तो एक ही स्थान पर। तो बाबा कहते दिन और रात यहाँ होता है ये कोई नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर उनके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी, तो आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात। अब बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने, तो बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, उन पर तुमको जीत पानी है, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। ऐसे नहीं खाली ब्रह्मचर्य पालन किया हो गई पवित्रता, परंतु कोई भी विकार का अंश न हो, इसलिए बाबा कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से क्या क्या हुआ, अपवित्र होने से तुमने बहुत पाप कर्म किए हैं, ऐसे नहीं केवल काम विकार को जीता तो पाप को जीता, क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत वैर दुश्मनी न जाने क्या क्या, उनसे भी कितने पाप बनते हैं। तो बाबा कहते हैं देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता नहीं, यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला है, उस माला में क्या क्या है, ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे फूल को क्या कहेंगे शिव, वो है फूल, वो है उनको कहेंगे शिव, वो है निराकारी फूल, निराकारी फूल, वो कोई साकारी फूल नहीं, ऐसे नहीं सूल फूल है, वो निराकारी फूल शिव बाबा, वो है निराकारी फूल। फिर साकार में मेल फीमेल है, विजय माला निराकार की माला नहीं है, विजय माला तो साकार की माला है ना, रुद्र माला निराकार की माला है, और शिव बाबा की माला परम धाम में, लेकिन सतयुग में तो विष्णु की माला है, तो वो वैजयंती माला विष्णु की माला, लेकिन फूल जो है वो निराकार है, वो साकार नहीं है, वो जो मेरु है डबल बीड वो साकार है, तो बाकी बाबा कहते सब साकार की माला है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा फिर साकार में मेल फीमेल है, उनकी माला बनी हुई है, विजय माला वैजयंती माला उनकी माला बनी हुई है मेल फीमेल की। शिव बाबा द्वारा ये पूजन सिमरण लायक बनते हैं, इसलिए निराकार फूल ऊपर, परंतु वो बाकी माला साकार है, क्योंकि शिव बाबा ने उनको ऐसा बनाया। तो शिव बाबा द्वारा यह पूज्य सिमरण लायक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं याद के बल से। कैसे विजय पा रहे हैं विश्व पर? याद के बल से। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। वो लोग तो बिगर समझ कह देते हैं, प्रभु तेरी माया प्रबल है। प्रभु फिर तेरी माया प्रबल है। किसके पास धन होगा तो उनके पास माया बहुत है, ये कहेंगे। हाँ, इनके पास माया बहुत है। वास्तव में माया तो पांच विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहा जाता है। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया है, 10 शीश वाला। अब चित्र है तो समझाया जाता है। हाँ, अभी चित्र बना है रावण का, 10 शीश वाला, तो उस पर समझाया जाता है। जैसे कई चित्र हैं तो उन पर समझाते हैं ना, इसका अर्थ क्या है। जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं, कई चित्र दिखाते हैं ना। अंगद ने कहा, तुम तो राम पर तो क्या जीत पा सको पाओगे, मैं उसका दूत बन के आया हूँ, आप मेरे पर भी जीत नहीं पा सकते हो। तो रावण गुस्सा हो गया, तू क्या है, तेरे पर क्यों नहीं जीत पा सकूंगा। तो कहा, अच्छा पाके दिखाओ। और जोर से पाँव रखा धरती पर, अब हिला के दिखाओ। तो तुम तब विजयी बन सको कहलाओगे जब ये पाँव हिला के दिखाओ। तो रावण ने बहुत कोशिश की, पाँव तो हिला ही नहीं। तो कहा, दूत ही इतना शक्तिशाली है तो राम कैसा होगा। तो इसीलिए बाबा कहते दृष्टांत बना दिए हैं, बाकी कोई चीज है नहीं। ऐसे नहीं कि सचमुच कोई ऐसे गया होगा रावण के पास और कहा मेरा हिलाओ, बाकी कोई चीज है नहीं। बाप कहते हैं, माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो। और उसमें फिर जोड़ क्या दिया है कि रावण ने हिलाने की कोशिश की, अब उसके सिर पर तो ताज था और जैसे हिलाया तो सिर भी तो हिल गया ना। तो सिर हिल गया तो वो ताज उड़ करके जाके सीधा राम के चरणों में गिरा। भाई तुम्हारी तो हार निश्चित है, तो ताज ही उतर गया। तो बाबा कहते हैं, तो दृष्टांत बना दिए हैं, बाकी कोई चीज है नहीं। तो बाप कहते, माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि ये सब दृष्टांत बना दिए हैं, जिनका अर्थ अभी तुम बच्चे जानते हो। भ्रमरी का भी दृष्टांत है। भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। तुम विष्टा के कीड़ों को ज्ञान योग की भूं भूकर पति से पावन बनाते हो। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे, ये भूनो करते हो सबको कि बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर कछुए का भी दृष्टांत है। इंद्रियों को समेट कर अंतर्मुख हो बैठ जाते हैं। योगियों को कैसे दिखाते, अंतर्मुख हो इंद्रियों को समेट कर बैठ जाते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं, भल कर्म करो फिर अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि ये सृष्टि है ही नहीं, ऐसे अंतर्मुख हो जाओ जैसे कि ये सृष्टि है ही नहीं। चुरपुर बंद हो जाती है, भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते हैं। हिलना डुलना सारा टाइम योग में बैठे हैं, लेकिन इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, इसको थोड़ी योग कहेंगे ना। तो बाबा कहते एकदम हिलना डुलना भी बंद हो जाए। तो भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते हैं। गीत गाना, ये करना, कितना हंगामा है भक्ति मार्ग में, बहुत हंगामा है, आवाज ही आवाज है। गीत गाना, ये करना, कितना हंगामा, कितना खर्चा होता है, कितने मेले लगते हैं। और बाप कहते हैं, ये सब छोड़ अंतर्मुख हो जाओ, बस सब झमेलों से पार अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि ये सृष्टि नहीं है, ये सृष्टि नहीं है, हाँ सृष्टि नहीं है तो बाकी क्या सोचेंगे इस दुनिया का। अपने को देखो, हम लायक बने हैं, कोई विकार तो नहीं सताता है। हम बाप को याद करते हैं, बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को तो दिन रात याद करना चाहिए। विश्व का मालिक बना रहा है हमें बाबा, तो दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा हैं, हमारा वो बाप है, अंदर में ये चलता रहे। हम आत्मा है, हमारा वो बाप है, ये चलता रहे। हम अब नई दुनिया के फूल बन रहे हैं। क्या सोचो, हम नई दुनिया के फूल बन रहे हैं। अक का व टांगर का फूल नहीं बनना है। अक जो होता है वो बड़ा कड़वा फूल होता है, जंगली फूल होता है, जंगलों में बहुत मिलता है। और टांगर वो देखने में बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन वो कोई बहुत शोभनिक भी नहीं होता, बस बड़ा बड़ा बहुत होता है, और सुगंध का तो नाम निशान नहीं। अक व टांगर का फूल नहीं बनना है हमको, तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर, बिल्कुल खुशबूदार बनना है। कोई बदबू न रहे, बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए, बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे, माया छोड़ेगी नहीं, माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे, पर कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है। ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है। पहले पहले कैसे सुधारेंगे, मुझे कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, ये पहला कदम अपने आप को सुधारने का। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, शरीर निर्वार्थ कर्म भी भल करो। बाबा मना तो करते नहीं है कि कर्म नहीं करो, बस सब छोड़ छाड़ करके बैठ जाओ एक जगह, वो भी नहीं। शरीर निर्वार्थ कर्म भी भल करो, उनसे भी टाइम निकाल सकते हो। भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते रहो, भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते रहो। बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। जब बाप को निरंतर याद करेंगे, तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे। देखना है, अब क्या देखना है अपने अंदर, कि कितना सच्चा सोना बना हूं, सच्चा सोना मैं कितना बना हूं। बाबा कहते ये अपने अंदर देखना है। आज कितना घंटा याद में रहा, कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा रहा, तो कल से तो आज की स्थिति डाउन हो गई ना। कल तो 3 घंटा रहा, पर आज 2 घंटा रहा, ये तो आज घाटा हो गया। तब 3 घंटे से तो 4 घंटा होना चाहिए ना, 3 से 2 क्यों हो गया, ये तो घाटा हो गया। उतरना और चढ़ना होता रहेगा, यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ ऊंचे कहाँ नीचे होते हैं, है ना, चढ़ाई होती है फिर कभी उतराई होती है, तो होता ही रहता है यात्रा पर। तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी, बाबा जानते हैं, सबकी एक स्थिर हो जाए और सदा ऊंची ऊंची ही हो, नीचे आई नहीं, ये नहीं होगा, बाबा जानते हैं। तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी। अपना खाता देखना है, हमारा हिसाब किताब कैसा है, खुद का देखना है। मुख्य है याद की यात्रा। तो भगवान वाच है तो जरूर बच्चों को भी पढ़ाएंगे। अब भगवान पढ़ाने आते हैं, वो टीचर बन के पढ़ाते हैं, होमवर्क भी देते हैं ना। कल बताया ना बाबा ने, होमवर्क भी दिया, क्रोध मुक्त कहाँ तक बने हैं। तो भगवान वाच है, वाच है मतलब भगवान ने बोला, भगवान बोले तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे। अब बोलेंगे किसके सामने, बच्चों के आगे पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे। अब भगवान किसको कहा जाए, कृष्ण तो शरीरधारी है, पहले कि भगवान कौन है, वो बोलेगा लेकिन लेकिन वो तो निराकार है। अगर कहे नहीं वो कृष्ण के तन में आता है, अब कृष्ण तो शरीरधारी है, भगवान तो निराकार परम पिता परमात्मा को कहा जाता है, खुद कहते हैं भगवान, खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है, साधारण तन कौन सा, ब्रह्मा का तन तो ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है। सफेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की होती है ना, किसी ने बताया, पता नहीं बाबा ने कैसे कहा, तो बाबा बहुत करके देखा जाता है, हम बाबा दादी मना करती थी कोई मूछे रखे कोई दाढ़ी रखे, आजकल कलयुगी दुनिया में तो ये फैशन हो गया, मूछे भी रखेंगे दाढ़ी भी रखेंगे, दादी बिल्कुल मना करती थी, बिल्कुल मना करती थी, ये ब्राह्मणों की क्वालिटी है ही नहीं। तो किसी ने बाबा से पूछा, बाबा, फिर बाबा ने मना किया, बाबा आपने तो मूछे रखी है ब्रह्मा बाबा ने मूछे रखी है। तो बाबा ने क्या जवाब दिया, अभी वो बहन बता रही है, तो बाबा ने जवाब दिया कि देखो ब्रह्मा का जो यादगार है सूक्ष्म वतन का भले है या त्रिमूर्ति में यादगार है, तो उसने तो दाढ़ी मूछ दिखाया ब्रह्मा को, तो दाढ़ी अगर बाबा मूछे न रखे तो ब्रह्मा बाबा को पहचानेंगे ही नहीं, तो भले दाढ़ी नहीं रख रहे हैं लेकिन मूछे हैं ताकि ब्रह्मा की यादगार तो थोड़ी तो कायम रहे ना, ये यादगार है। उनका ठीक है भैया आप जो कहते हो, तो इसीलिए मूछे रख, बाबा भी बिल्कुल नहीं चाहते, दादी तो बिल्कुल देखते कहती थी जाओ मूछे निकलवा के लाओ, एकदम दादी आपको देखेगी भी नहीं, ये सब निकलवा के लाओ, बहुत स्ट्रिक्ट थी दादी। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो बाबा कहते हैं हाँ, कहाँ गए, तो सफेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की होती है, होती है ना, चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ, छोटे रथ में थोड़ी प्रवेश करेंगे, खुद ही कहते हैं ना, छोटे बच्चे में थोड़ी भगवान प्रवेश करेंगे, खुद ही कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं, वो है सुप्रीम गॉड फादर अथवा सुप्रीम सोल, तुम भी 100% पवित्र थे अभी 100% अपवित्र बने हो, सतयुग में 100% प्यूरिटी थी तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी थी, मुख्य है प्यूरिटी, देखते भी हो प्यूरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते हैं, जो पवित्र है उनके आगे जो अपवित्र है वो माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, सन्यासियों के आगे ऐसे कभी नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे सन्यासियों के आगे कि आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, ये सन्यासियों के आगे कभी नहीं कहेंगे, और हम पापी है नीच है ये किसके आगे कहेंगे, केवल देवताओं के आगे कहेंगे, देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं। बाबा ने समझाया है कुमारी को सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करती है तो सब उसके आगे शादी करती है तो सबके आगे वो माथा टेकती है, पहले सब उनको माथा टेकते हैं और जैसे शादी करके घर में आई सब के आगे वो माथा टेकती है, और ही कहेंगे ये ससुर के आगे माथा टेको सास के आगे माथा टेको, तो सिर भी ढकती है और मुंह भी जैसे छिपाती है और माथा टेकती है। बाबा कहते वो तो जैसे भिखारी बन गई, तो इसीलिए वो सबका पांव छूती है। तो बाबा कहते हैं देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं, तो बाबा ने समझाया है कुमारी को सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करती है तो सबके आगे माथा टेकती है क्योंकि विकारी बनती है ना। अभी बाप कहते हैं तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी ही रहेंगे, अभी बनेंगे निर्विकारी तो आधा कल्प निर्विकारी रहेंगे, अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है, ये है मृत्यु लोक, वो है अमर लोक, अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का 3रा नेत्र मिलता है बाप ही देते हैं और तो कोई दे नहीं सकता ज्ञान का 3रा नेत्र, बाप ही देते हैं, तिलक भी मस्तक पर देते हैं, अभी आत्मा को ज्ञान मिला है, जिस किसके लिए, क्यों ज्ञान मिला है हम आत्माओं को, किसके लिए? तुम अपने को आपे ही राज तिलक दो। अब ज्ञान मिला है तो अपने आप को आप ही राज तिलक दो। ये तिलक की निशानी, तीसरे नेत्र की निशानी। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को आपे ही बैरिस्ट्री का तिलक देते हैं। परीक्षा दी और डिग्री मिल गई, बैरिस्टर बन गया, तो आप ही अपने आप को जैसे बैरिस्ट्री का तिलक देते हैं। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा ना, पढ़ेंगे नहीं, एग्जाम देंगे नहीं, सर्टिफिकेट कोई लेंगे नहीं, तो तिलक कहाँ से मिलेगा बैरिस्ट्री का? आशीर्वाद से थोड़ी मिलेगा। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करे, सब पास हो जाए, आशीर्वाद दे दे सब स्टूडेंट्स को तो सब पास हो जाए। बच्चों को अपने अपने को आप ही राज तिलक देना है। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, और चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। तो बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। देवी देवताएं डबल सिरताज बनते हैं, पतित राजाएं भी उन्हों की पूजा करते हैं। तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंचा बनाते हैं। बाबा हमें पुजारी राजाओं से भी ऊंचा बनाते हैं। जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं। कल द्वापर कलयुग में राजाओं के पास कौन जन्म लेते हैं? जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत दान पुण्य किया। और सतयुग में राजा महाराजाओं के पास कौन जन्म लेते हैं? जिन्होंने बहुत ज्ञान दान किया, ज्ञान रत्न बहुत इकट्ठे किए। जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे किए हैं। अभी यहाँ तुमको मिलता है, क्या मिलता है बाबा हमें क्या देते हैं? अविनाशी ज्ञान धन। ये धारण कर फिर दान करना है, ये सोर्स ऑफ इनकम है। हमारी कमाई का आधार क्या है? जो ज्ञान रत्न हम धारण करते हैं वो औरों को देते हैं, ये सोर्स ऑफ इनकम है। पढ़ाई भी, टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं ना, पढ़ाना माना जैसे पढ़ाई का दान करना। वो पढ़ाई है अल्पकाल के लिए, विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं तो पढ़ाई खत्म। लौकिक पढ़ाई तो ऐसे ही है ना, पढ़ाई पढ़ने, कई बार सुनते हैं, न्यूज भी बहुत कई बताते हैं कि मेरा बेटा पढ़ने गया, और पढ़ने गया तो वहाँ बहुत डिग्री भी उसको वहाँ मिली, सब कुछ मिला, और बोला माँ मैं बस आता हूँ, मैं अगले महीने आ जाऊंगा, और देखो अचानक एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत हो गई। सिर्फ बहुत न्यूज बताते हैं, तो देखो इतनी बड़ी डिग्री ली, विदेश में गया, माँ बाप ने कितना खर्चा किया, और सब सर्टिफिकेट भी मिला, और कहीं एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। तो बाबा कहते हैं वो पढ़ाई है अल्पकाल के लिए, विलायत में पढ़कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं तो पढ़ाई खत्म, विनाशी हो गई ना। मेहनत सारी मुफ्त में गई, सारा जो धन लगाया पढ़ाई पर वो मुफ्त में चली गई सारी मेहनत। तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती है, नहीं जा सकती है, तुमको इसकी प्राप्ति 21 जन्मों तक मिलेगी। तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती, तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। वहां अकाले मृत्यु होती ही नहीं, ऐसे किसी की समय से पहले मृत्यु होती नहीं, ये पढ़ाई साथ ले जाएंगे। अब जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, सबको रास्ता बताना है। बाबा तो राय तो बहुत अच्छी देते हैं, एक ही बात समझाओ, ज्यादा भी तीख तीख बाबा कहते मत करो, एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद भगवत गीता की इतनी महिमा क्यों है? भगवान की ही श्रेष्ठ मत है इसीलिए महिमा है। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो एक ही होता है, वो है निराकार, सब आत्माओं का बाप, इसलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो बहन भाई हो जाते हैं। इस समय तुम बहन भाई हो तो पवित्र रहना पड़े। ये है युक्ति, पवित्र रहने की युक्ति क्या है, भाई बहन है हम, ये समझना। क्रिमिनल आए एकदम निकल जाए, संभाल रखनी है हमारी आंखें, कहां मतवाली तो नहीं बनी है, मतवाली मतवाली चंचल, जैसे मन मौजी कल बाबा ने कहा ना मौजी राम, तो आज बाबा कहे मतवाली, हमारी आंखें का मतवाली तो नहीं बनी है। बाजार में अब देखो कैसे मतवाली बनती है, बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई खाऊं, चना चोर गरम है ना, वो भी बेचते ना चना चोर गरम, तो दिल हुई तो बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई, ऐसे दिल बहुतों की होती है, फिर खा भी लेते हैं। ब्राह्मणों ब्राह्मणी है, अब देखो बाबा टीचर्स के लिए भी कहते हैं, ब्राह्मणी है किसी भाई के साथ जाती है तो वो कहते हैं चना खाएगी, वो भाई कहेगा टीचर बहन को चना खाएगी, एक बार खाने से पाप थोड़ी लग जाएगा, भले कितनी भूख लगे भूख लगेगी, और वो नहीं खाती है तो वो कहेगा एक बार चलो भूख लगी है खा लो ना, चना ही मिल रही है, ये तो कोई तो कुछ भी नहीं है, ये तो खा सकते हो, तो एक वो एक बार खाने से पाप थोड़ी लग जाएगा, वो भाई कहेगा उसको। अब जो कच्चे होते हैं वो झट खा लेते हैं कच्चे जो होते हैं वो झट खा लेते हैं। अब इस पर शास्त्रों में भी दृष्टांत है, क्या दृष्टांत है, बोट में बैठे थे, जहाज में बैठे थे तो भूख लगी, तो जहाज से जहाज कहाँ खड़ा रहा, उतर गए चना खाने लिए, उतर गए और जहाज चला गया, वो वहीं चना खाने ही बैठ गए थे। तो इस पर शास्त्रों में भी दृष्टांत है, ये कहानियां बैठ बनाई है, बाकी है सब इस समय की बातें, तुम सब सीताएं हो, ये सारी बातें इस संगम की है, तुम सब सीताएं हो, तुमको बाप कहते हैं, एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, बाकी और कोई बातें है नहीं। अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, ये तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई कोई ऐसा काम करते हैं ना, रावण जैसा काम करते हैं तो कहते हैं तुम तो असुर हो, क्योंकि काम ऐसा करता है, गुस्सा इतना दिखाता है, मारता ऐसे है, तो कहेंगे ना तुम तो असुर हो। चलन आसुरी है, विकारी बच्चे को कहेंगे तुम तो कुल कलंकित बनते हो। अब बच्चा अगर कोई गलत संग में चला जाए तो पिता कहेगा ना तुम तो कुल कलंकित बन गए, तुम तुम्हारा परिवार कितना रॉयल कितना अच्छा, हाँ तुमने तो नाम बदनाम कर दिया हमारे परिवार का। विकारी बच्चे को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो, ये फिर बेहद का बाप है, तो बेहद का बाप फिर क्या कहते हैं, तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं फिर तुम काला मुंह करते हो, फिर बेहद का बाप ऐसे कहेंगे तुम काला मुंह करते हो, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हो, काले से भी काला बन जाते, पहले ही समझ काले है फिर और काले से भी काला बन जाते हैं, विकारी आत्मा की बात है ये, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी चढ़ती कला होती है बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बने, कितना सस्ता सौदा, बाप का बना तो बात तो विश्व के मालिक बने। संशय की बात हो नहीं सकती, बाप है हेवनली गॉड फादर तो जरूर हेवन सौगात में लाएंगे बच्चों के लिए। अब शिव जयंती भी मनाते हैं, क्या करते होंगे, क्या क्या करते शिव जयंती पर, व्रत आदि रखते होंगे। वास्तव में व्रत कौन सा रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए विकारों का। अब एक दिन व्रत रखा, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, आज मेरा व्रत है, परंतु विकारों का तो व्रत रखा नहीं, और चलो एक दिन रखा भी नहीं, विकारी विकारी नहीं बनना, फिर दूसरे दिन तो फिर विकारी बन गए, या तो बाबा कहते आजीवन। तो इसीलिए वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का, विकार में नहीं जाना है, इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है, अब ये एक जन्म पवित्र बनो। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, तुम देखना, अब क्या देखना, तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, अभी तो 140 करोड़, उस दिन तो किसने कहा 145 करोड़, पता नहीं बढ़ाते ही जा रहे हैं भारत की जनसंख्या। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी और धर्म ही नहीं रहेंगे जो ताली बजे। एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है। दूसरा, खाने पीने की पूरी पूरी परहेज रखनी है, कभी भी आंखें धोखा न दे, ये संभाल करनी है। अपने को सुधारना है, कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान, मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। प्रकृति को, तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना तथा खूने नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना, अन्य आत्माओं को सहयोग देना, नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना, इन सब विशाल कार्यों के लिए क्या करना होगा, मनसा शक्ति की आवश्यकता है। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी होगी। अंत सुहाला हो हमारा कब होगा, जब मनसा शक्ति इतनी पावरफुल होगी। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, एक के साथ लाइन क्लियर। अभी इसके अनुभवी बनो तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। स्लोगन, निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। अव्यक्ति शारी, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। उसके अंतर्गत परमात्म प्यार क्या है, आनंदमय झूला, आनंदमय झूला परमात्म प्यार। इस सुखदाई झूले में झूलते सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। परमात्म प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि क्या है, कैसे मिलेगा परमात्म प्यार? परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा उतना प्यारा, जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। अच्छा, ओम शांति। अभी दादी जी का महीना चल रहा है, आज दादी जी की चौथी विशेषता, सच्ची दिल और उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ने और उड़ाने वाली। दादी जी क्या थे, सच्ची दिल और उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ने और उड़ाने वाली। बाबा जो कहते हैं सच्ची दिल पर साहिब राजी। दादी जी ने सच्चे दिल से बाबा को अपना साथी बना लिया तो अनेक प्रकार के विघ्न अपने आप समाप्त होते गए। विघ्न तो कभी बीमारी के रूप में आता है, कभी लौकिक अलौकिक परिवार की तरफ से आता है, कभी संगठन में स्वभाव संस्कार के रूप से आता है। परंतु यदि सच्चे दिल से बाबा को अपना साथी बनाया है तो समय पर बाबा की मदद स्वतः मिलती है। उनकी अटैचमेंट किसी भी व्यक्ति वस्तु या वैभव में नहीं होती। वे मुक्त होने कारण उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ते रहते हैं। दादी जी ऐसे ही उड़ता पंछी बन उमंग उत्साह से सेवाओं में आगे से आगे बढ़ती रही। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भट्टी वाले तो सब चले गए होंगे, कल से फिर दूसरी भट्टी शुरू हो रही है। अभी इस बार पंजाब आ रहा है, फरीदकोट। प्रेम बहन रहते हैं फरीदकोट में, पंजाब जोन, तो फरीदकोट के भाई बहने आते हैं, आएंगे। ओम शांति।